भगवते वासुदेवाय बोलिए। भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। तो यही स्थान सुदामापुरी है, सुदामा का निवास स्थान, और उसलिए बहुत गौरवशाली है। सुदामा विप्र का गौरव और ख्याति है, चूंकि वे भगवान कृष्णा के शुद्ध भक्त है। भगवान जैसे महान है, वैसे इनके भक्तों भी महान है। भगवान स्वयं कृष्ण, भगवान स्वयं भौतिक जगत में आते हैं। इसके बारे में भगवान कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिः भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि अहम्। और भी कहते भगवान, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब जब संसार में धर्म ग्लानि होते हैं, अर्थात धर्म का ह्रास कमी होती है, तब तब मैं इस भौतिक जगत में आता हूँ। और किस कारण से, किस काम करने के लिए भगवान आते हैं? तो दुष्ट जन का विनाश करने के लिए और साधु जन का परित्राण उद्धार करने के लिए हर युग में भगवान आते हैं। तो भगवान कृष्ण दुष्टों का विनाश करते हैं, और वास्तव में भगवान का स्वयं अवतरण की आवश्यकता नहीं है दुष्टजन का संहार करने के लिए। इनकी भौतिक प्रकृति के द्वारा भी करो करो दुष्कृति दुष्टजन का संहार हो सकते, परंतु वे विशेषकर साधुजन का उद्धार करने के लिए भौतिक जगत में आते हैं। द्वो भूतौ सार्गे लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च। दो प्रकार के व्यक्ति है भौतिक संसार में, एक है देव और दूसरा है असुर। विष्णु भक्त स्मितो दैव असुरस्तत विपार्याया। कौन है देव? देव है जो भगवान, तो देव है जैसे गीता में अर्जुन कृष्ण को संबोधन करते, देव देव जगतपते। देव शब्द का अर्थ है जो प्रकाशमान है, और विशेष का वो शब्द का अर्थ है जो पूजित होते, जो दूसरे लोग की, वो व्यक्ति की आराधना करते, वो व्यक्ति देव बोलते। तो देवगण बहुत है, महादेव शिव शंकर, इंद्रदेव, चंद्रदेव, सूर्यदेव और ये सब देवों देवदेव अर्थात जो आराधित होते हैं वो सब देव, तो वो देव की आराधना करते हैं, वो देव है कृष्णा जगतपति जगन्नाथ कृष्णा यंग ब्रह्मा रुद्र मरुत स्तुनवंती दिव्याय स्तवाय सब बड़े बड़े देवताओं वो देव आदि देव। गीता में भगवान कृष्ण की संबोधन अर्जुन इस प्रकार किया, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम। आदिदेव है कृष्ण, सब बड़े बड़े देवता है उनके मूल स्रोत कृष्ण है, परम ब्रह्म परम ब्रह्म है कृष्ण। आप सब सुनते हैं और वैदिक शब्द अहम ब्रह्मास्मि, हम सब ब्रह्म है अर्थात हमारा मूल स्वभाव आध्यात्मिक है। ये सब शरीर जो हम धारण करते हैं ये सब अस्थाई है, परंतु हम जो आत्मा है हम शाश्वत है। तो हम सब ब्रह्म है अर्थात हमारा मूल स्वभाव सच्चिदानंदमय है, परम ब्रह्म है कृष्ण, हम ब्रह्म है परंतु हम भगवान नहीं है। भगवान शब्द का अर्थ है जो पूरा शक्तिमान है, जो कभी भी माया की शक्ति से प्रभावित नहीं होते। तो ये सब शब्द जो गीता में है सब बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, गहरा है। परम ब्रह्म परम धाम अर्थात सब कुछ भगवान में निवास करते हैं, भगवान सब सब कुछ जो है उनके आधार है भगवान कृष्ण। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान, ये सब शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अर्जुन कृष्ण भगवान को बताया कि पवित्रम परमं भवान, कृष्ण परम पवित्र है। तो कुछ लोग भगवान कृष्ण की निंदा करते हैं, ऐसे कहते हैं कैसे पवित्र होते हैं। तो ब्रज गोपियां से वो लीला जो की वो अन्याय है, वो अशुद्ध है, परंतु बड़े बड़े मुनि देवता सब कृष्ण की आराधना करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि भगवान कृष्ण इतना पवित्र है कि खाली उनका स्मरण करने से, खाली उनका नाम उच्चारण करने से हम जो अपवित्र है अर्थात हम जिनके हृदय में काम क्रोध लोभ मोह मादा मत्सार्य सब कुछ गंदगी है, हम पवित्र हो जाते हैं अर्थात ये सब कलुष मन से निकल जाते हैं केवल भगवान कृष्ण का स्मरण करने से। तो कैसे भगवान अपवित्र हो सकते, नहीं वे परम पवित्र है। तो कृष्ण की लीला वो सब विषय उसके बारे में समझना कठिन है, क्योंकि साधारण भौतिक दृष्टि से वो तो अन्याय जैसे ही दिखते हैं। तो इसलिए ये परम पवित्र आध्यात्मिक ज्ञान तत्व ज्ञान वो सब साधुजन गुरुजन से सीखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कृष्ण एक दुष्टजन, वे दुष्टजन का विनाश करने के लिए आते हैं और सब साधुजन विशेषकर ये पवित्र भारत भूमि में सब महान महान आचार्य जिनमें विशेषकर गुजरात में प्रसिद्ध है श्री वल्लभाचार्य और इनके पहले श्री शंकर आचार्य, श्री रामानुज आचार्य, श्री मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी, निम्बार्क आचार्य, तो सब महान महान आचार्यों जिनके चरित्र में कुछ भी कलुष नहीं है, तो सब वो कृष्ण की स्तुति करते हैं। वो कृष्ण की आराधना करते हैं और अर्जुन भी श्री कृष्ण की श्रेष्ठता के बारे में कहते हैं कि आह स्ट्रंग ऋषि सर्वे देवार्षे नारद स्थता असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रह्मषि मे। हे कृष्ण आप परम ब्रह्म है, परम धाम है, परम पवित्र है, पुरुषम शाश्वतम दिव्यम, शाश्वत दिव्य पुरुष हे कृष्ण। कृष्ण तो कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। वे आदि देव अज अर्थात कृष्ण का जन्म नहीं होते। भगवान कृष्ण कर्म फल के अनुसार हम जैसे भौतिक जगत में नहीं आते, वे आते इनकी अपनी इच्छा से हमको उद्धार करने के लिए। आदिदेव मजम विभुम, विभुम का मतलब भगवान कृष्ण परम शक्तिमान है, सर्वशक्तिमान है। तो भगवान कृष्ण के बारे में अर्जुन कहते हैं और अर्जुन और भी कहते हैं कि स्वयं मैं ऐसा नहीं कहता हूँ, वो सब बड़े बड़े मुनि ऋषि वे भी बोलते हैं। तो प्राचीन काल में पुराणिक युग में असित देवल व्यास ऐसे बड़े बड़े ऋषि भगवान कृष्ण के बारे में बोलते थे और आधुनिक युग में श्री शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु सब बड़े बड़े आचार्य भी स्वीकार करते हैं कि कृष्ण परम पुरुष भगवान ही है। तो ये शास्त्र का सिद्धांत है कि भगवान कृष्ण सर्वशक्तिमान और वे भौतिक जगत में आते हैं हमको उद्धार करने के लिए। तो पहले सुदामा के बारे में कुछ बोला था। तो सुदामा की ख्याति है कि वे भगवान के परम भक्त है। भगवान कृष्ण भौतिक जगत में आते हैं दुष्टजन का संहार करने के लिए और साधुजन का उद्धार करने के लिए, और भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्तों भी आते हैं भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए। भगवान कृष्ण साधुजन का उद्धार करते हैं कैसे? भगवद गीता वाणी परिवेशन करने से और इनकी दिव्य माधुरी लीला, इनकी दिव्य माधुरी लीला प्रकाशन करने से साधु जन को आकृष्ट करते हैं। जैसे आज तक साधु जन आनंद लेते हैं भगवान श्री कृष्ण की लीला कहानियां सुनने से, और वो सब लीला सुनने से हृदय पवित्र होते हैं, काम क्रोध लोभ इत्यादि निकल जाते हैं हृदय से और हम योग्य होते हैं भगवान श्री कृष्ण के धाम में प्रवेश करने के लिए। गीता में श्री कृष्ण कहते जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तद्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुनः। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो तद्वतः पूरी तरह जानते हैं कि मेरा श्री कृष्ण की लीला, जन्म और लीला सब कुछ परम पवित्र है, दिव्य है, त्रिगुण के अतीत है, ऐसा व्यक्ति भगवान कृष्ण कहते हैं तो शरीर चरण के पश्चात मेरे धाम आते हैं, ऐसा व्यक्ति भौतिक संसार में वापस नहीं आते। सो भगवान कृष्ण ऐसे कहते हैं और इनके भक्तों के बारे में गीता में कृष्ण भगवान बहुत कुछ कहते हैं। सततम कीर्ति महात्मा नस्तु मां भारत दैविंग प्रकृति माश्रिता भजन्त्य अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिनव्ययम्। भगवान कृष्ण कहते हैं कि वास्तविक महात्मा कौन है? पोरबंदर की ख्याति है क्योंकि महात्मा गांधी का जन्म स्थान है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं वो महात्मा शब्द का क्या अर्थ है। आजकल ऐसे होते हैं, अगर कोई व्यक्ति आदमी लंबा दाढ़ी अगर हो और ऐसा लाल कपड़ा पहने है और ऐसे ओम ओम कहते ओ महात्मा है, ऐसे कहने नहीं, नहीं महात्मा, ऐसे महात्मा। वास्तविक महात्मा कौन है इसके बारे में गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, महात्मा नस्तु मां पार्थ दैविंग प्रकृति माश्रिता। हाँ, महात्मा शब्द का अर्थ है जो दैवी प्रकृति, कृष्ण की दैवी प्रकृति में आश्रित है। भगवान कृष्ण के बहुत बहुत शक्तियां है या प्रकृति है। इसके बारे में उपनिषद वचन है कि वो श्लोक क्या है, श्वेताश्वत्र उपनिषद, स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया परास्य शक्ति विविधाय वशूयते, स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया। भगवान के बहुत बहुत शक्तियां है, उनमें दो मुख्य विभाग है, दैवी प्रकृति और भौतिक प्रकृति। भौतिक प्रकृति से ये पूरा भौतिक जगत गठित है, भगवान कृष्ण की सृष्टि से, मायाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जगत कैसे सृष्ट होते, कैसे चलते रहते, जगत शब्द का गच्छति थी जगत, जो सदैव चलते रहते हैं उसको जगत बोलते, तो कैसे चलते रहते हैं, भगवान का अध्यक्ष है, भगवान सब कुछ देखते रहते हैं, भगवान कृष्ण का देखभाल से और उनकी शक्तियों से जगत चलते रहते, ये भौतिक जगत है। और वैकुंठ जगत भी है जो सच्चिदानंद शक्तियों से चलते रहते हैं, और वो दैवी प्रकृति की मूर्ति है श्री राधा। तो श्री राधा के आश्रित है, भक्ति शक्ति आश्रित है कौन, भगवान कृष्ण के भक्तों और ऐसे महात्मा कहते हैं। और महात्मा महात्मा जन का क्या क्या लक्षण है गीता में इसके बारे में भगवान कृष्ण कहते हैं, भजंत्य नन्य मनसो, ऐसा व्यक्ति महात्मा जन कृष्ण का भजन करते अनन्य मानस, तो और कोई दूसरा विषय पर उनका मन नहीं लगाते, तो सदैव कृष्ण का भजन करते। क्यों, क्योंकि जानते ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्, जानते कि भगवान कृष्ण सब कुछ जो है, सब जीव और सब प्रकृति के स्वामी और भगवान कृष्ण अव्यय है, अर्थात सनातन है, अविनाशी है। और कैसे भगवान कृष्ण का अनन्य भजन करते हैं महात्मा जन, सततम कीर्तयन्तो मां, सदैव कृष्ण कीर्तन करते हैं महात्मा जन, सततम कीर्तयन्तो मां यथंतश्च दृढ़व्रता। हा, दृढ़ व्रत से भगवान कृष्ण का भजन करते हैं, निरंतश्च दृढ़व्रत नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण का, भगवान कृष्ण को नमस्कार करते हैं, और इस प्रकार शुद्ध भक्तों सदैव कृष्ण की सेवा में नियुक्त रहते, इसलिए उनको महात्मा बोलते हैं। महात्मा है और दुरात्मा है। दुरात्मा कौन है, जो और जिनकी बुद्धि भौतिक विषयांग में नियुक्त है, तो दुरात्मा कौन है, तो विशेषकर कलि युग में तो लगभग सभी सभी लोग आप सब भाग्यवान है कि आप सुदामा विप्र के आश्रय में है यहाँ पर, और विशेषकर वल्लभाचार्य की कृपा से, भगवान श्री कृष्ण की स्वयं की कृपा से जो द्वारकाधीश है कृष्ण, ये सौराष्ट्र ये पूरा अंचल के लोग बहुत भाग्यशाली है, गौरवशाली है, पुण्यशाली है, क्योंकि आपकी संस्कृति में कृष्ण भक्ति मुख्य है और आप लोग के खून में स्वाभाविक रुचि है कृष्ण भक्ति के लिए। परंतु कलयुग का प्रभाव से वो वातावरण जो मुंबई से आते है तो यहाँ पर आ गया है, और वो प्रभाव बॉलीवुड का प्रभाव वो सब धीरे धीरे यहाँ पर आते हैं, और धीरे धीरे यहाँ के लोग भी तो ऐसे मॉडर्न बन जाते हैं। तो सुदामापुरी का आदर्श स्मरण करने से हमारा परम कल्याण होगा। हम किसी की निंदा नहीं करना चाहते, परंतु हमें सच बोलना चाहिए कि शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या राय का स्मरण करने से आपका कुछ भी आध्यात्मिक कल्याण नहीं होगा। कुछ मनोरंजन होते नहीं उनका स्मरण करने से, परंतु मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है हमें सोचना चाहिए। कितना जन्म हो गया भौतिक संसार में, असंख्य, कितना 84 लाख जीव जाति है नहीं, और मानव जन्म प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है, और मानव जन्म में अवसर है वो संसार चक्र से मुक्त होना। परंतु यदि हम ये दुर्लभ मानव जन्म तो खाली मनोरंजन में व्यतीत करेंगे या काम करने और पैसा कमाने से जीवन व्यतीत करते हैं, तो इसी प्रकार वो दुर्लभ मानव जन्म तो पूरा नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए सुदामा विप्र जैसे भक्तों भौतिक जगत में आते हैं और क्या करते हैं, उनका आदर्श चरित्र से हमको दिखाते हैं कैसे जीवन व्यतीत करना चाहिए जिससे हमारा परम कल्याण होगा। तो सुदामा विप्र का जीवन में हम देखते हैं कि वे संसार में उपस्थित होते हुए भी तो पूरा उदासीन थे संसारिक सुख से। वो संसारिक सुख क्या है, इंद्रिय सुख, और उससे क्या होते हैं, पुनरापि जननम पुनरापि मरणम, बार बार जन्म लेना है, बार बार मृत्यु प्राप्ति होती है। तो इंद्रिय सुख जो है तो सब जन्म में मिलते है। कुत्ते जो रास्ते में चढ़ते हैं कुत्ते भी इंद्रिय सुख मिलते है। तो शायद आप बहुत महंगा पलंग पर सोते एसी कमरे में, लेकिन वो सुख जो आप मिलते हैं नींद में तो एक ही सुख मिलते हैं कुत्ता जो रास्ते में सोते रहते हैं। कुत्ता तो कोई विशेष व्यवस्था नहीं है सोने के लिए, तो वैसे रास्ते में सो जाते हैं। वो नींद में वो सुख जो मिलते हैं तो एक ही सुख है जो आप मिलते हैं फर्स्ट क्लास 5-स्टार होटल में, बड़ा महंगा पलंग पर एसी लगा के, वो एक ही सुख मिलते कुत्ते। क्या है भौतिक संसार में सुख, क्या इंद्रिय सुख, और क्या है वो देखने से, क्या है मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट होते हैं, देखने देखने अच्छा लगते है, ओ बहुत सुंदरी है वो सब युवती का रूप, तो एक ही सुख मिलते है वो सुहा जो बहुत सुंदरी स्वरी देखते है, ओ कितना ब्यूटीफुल मिस वर्ल्ड, तो वो सब सुख जो उपलब्ध है मानव जीवन में इंद्रिय सुख वो ही मिलते सभी जन्मों में, इसलिए भगवान कृष्णा हमको बहुत बहुत महत्वपूर्ण उपदेश देते हैं। ना आप सब ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं तो जरा सा अभी और ज़्यादा ध्यान से सुने, क्योंकि वो उपदेश जो भगवान कृष्ण कहते हैं और मैं आपको अभी बताऊंगा बहुत 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 ही महत्वपूर्ण है, और यही उपदेश के अनुसार सब मनुष्य उनका जीवन व्यतीत करना चाहिए, यही उपदेश है। लब्ध्वासु दुर्लभमिदं बहुसंभवान्ते मनुष्यम अर्थदम अनित्यमपिह धीर तूर्णम यथेत न पतेदनुमृत्य याव निश्चयस्य विषय खलु सर्वतः स्यात्। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मानव जन्म प्राप्त करना बहुत ही दुर्लभ, बहुत बहुत जन्मों के पश्चात भाग्य से हम मानव जन्म मिलते हैं, और अभी सब जो आप सब जो यहाँ उपस्थित है और सुन रहे हैं, आप और हम सब मनुष्य जीवन प्राप्त किया है, सौभाग्य है। तो नद्वासु दुर्लभमिदं बहुसंभवन्ते मनुष्यम अर्थ, हमें सोचना चाहिए कि मनुष्य जीवन अर्थदम हमको अर्थ देते, तो अर्थ शब्द का अर्थ है कि हमको कुछ देते हैं, तो दो प्रकार का अर्थ है, भौतिक अर्थ है, भौतिक अर्थ क्या है पैसा, भौतिक अर्थ इंद्रिय सुख ये सब अर्थ बोलते हैं, और परमार्थ हमारा परमार्थ है, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए परमार्थ क्या है। तो बड़े बड़ा बंगलों में एसी कमरे में बड़ा पलंग पर सो जाना वो तो परमार्थ नहीं है, क्योंकि वो जैसे अभी बोला वो सुख जो हम मिलते हैं नींद में तो कुत्ता सुआ भी मिलते, तो परमार्थ क्या है, परमार्थ हम मिलते हैं संसार चक्र से मुक्त होने से और भगवान की शुद्ध भक्ति करने से। तो मनुष्यम अर्थदम ये परमार्थ कृष्ण भक्ति प्राप्ति वो संभव है मनुष्य जीवन में। तो हम और कुत्ते ऊंट ये सब जो है तो सब मनुष्य जीवन में और पशु पक्षी पेड़ और सब जीवन में सुख मिलते है, आहार निद्रा भय मैथुन, आहार निद्रा भय मैथुन हम छ सामान्य में तत् पशु बे नारायणम, आहार निद्रा भय मैथुन ये सब मनुष्य करते है और पशुओं भी करते है। तो मनुष्य पशु का जीवन में क्या अंतर है, धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषम, केवल मनुष्य जीवन में धर्म पालन करना संभव है वो संभव नहीं है पशु जीवन में, इसलिए धर्मे नहीं ना पशु भी नारायणम, एक नर या नारी यदि धर्म पालन नहीं करते वो खाली आहार निद्रा भाई मैथुन से जीवन व्यतीत करते, वो मनुष्य रूप धारण करके भी वास्तव में पशु से बड़ा नहीं है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं मनुष्यम अर्थदम, मनुष्य जीवन हमको अर्थ दे सकते। इसलिए मनुष्यम अर्थदम धीर, जो धीर है, जिनकी बुद्धि है, परमार्थिक बुद्धि है, धीर विचार करते हैं कि मनुष्य जीवन में हम परमार्थ मिल सकते हैं, परंतु अनित्य, हम ज्यादा दिन यही शरीर में नहीं रहेंगे, छोटे छोटे बालक है, खेलते और कुछ दिन के बाद मेहनत करना पड़ेगा, और कुछ दिन के बाद निवृत्त हो जाएगा, और कुछ दिन के बाद बाय बाय। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर ऐसे बालक का शरीर मिलेगा। अनित्य, हम ज्यादा दिन नहीं रहेंगे ये शरीर में, तो इसलिए हम धीर होने चाहिए। धीर शब्द का अर्थ है जो जीवन नष्ट नहीं, नष्ट करना नहीं करते, जो निष्फल रूप से जीवन व्यतीत नहीं करते, जो परम सत्य का अनुसंधान करते, जो बॉलीवुड वो सब मनोरंजन देखने से जीवन नष्ट नहीं करते। धीर धीर जन, जिनकी बुद्धि धीर है, ठंडा है, क्या कहते हैं, चूर्णम यथे न पते जानो मृत्यु, जानते कि निश्रेयस, परम श्रेय के लिए जीवन व्यतीत करना चाहिए। मृत्यु होगा तो उसके पहले हमें ऐसी साधना करना चाहिए जिसे पुनर्जन्म नहीं होगा, और यदि हम आपत्ति करते हैं कि नहीं हम बहुत सुखी हो सकते हैं भौतिक संसार में, इंद्रिय सुख उपलब्ध है नहीं, तो हमें विचार करना चाहिए कि हर एक जन्म में इंद्रिय सुख उपलब्ध है, स्वर भी इंद्रिय सुख मिलता है। हम वो मनुष्य जीवन में इंद्रिय सुख प्राप्ति ज्यादा होती है स्वर का शरीर में, क्योंकि कुछ श्रम नहीं करते, जैसे वो उसका फैक्ट्री जाना, दुकान जाना, काम करने का जरूरत नहीं है, हाँ, और खाना मिलते बिना श्रम से। ओ सुहा का खाना क्या है, हमारा खाना एक दिन के बाद, जो हम खाते हैं और उसका विसर्जन होते है, और ऐसे ताजा नाश्ता मिलते है सुबह का समय सुहा, तो ऐसा जीवन गौरवशाली नहीं है। कोई चाहते है कि अगला जन्म में सुअर का शरीर मिलेगा, कोई नहीं, कोई नहीं, लेकिन सुअर हमसे ज्यादा इंद्रिय सुख मिलते है बिना श्रम से। तो यदि हमारा जीवन का उद्देश्य इंद्रिय सुख प्राप्ति है, तो अच्छा है हम मानव शरीर धारण नहीं करेंगे, हम कुत्ता बिल्ली सुआ ऊंड ऐसे शरीर मिलेगा, और भौतिक प्रकृति के नियम के अनुसार जो केवल इंद्रिय सुख चाहते तो उस प्रकार का जीवन मिलते, परंतु मानव जन्म का उद्देश्य है वो सब इंद्रिय सुख से उदासीन होना, और वो परम आदर्श है सुदामा विप्र, सुदामा जो यहाँ सुदामापुरी में रहते थे और इनका आशीर्वाद से आज तक उपस्थित है, इन्होंने इनका आदर्श चरित्र से दिखाए को कैसे जीवन व्यतीत करना चाहिए सदैव भगवान कृष्ण का स्मरण में। तो पहले दैव योग से वो सुदामा तो बहुत दरिद्र थे, तो बहुत दरिद्र होने से दुखी नहीं थे क्योंकि उनका विचार था कि तो वैसे मेरी स्थिति है, पूर्वकृत कर्म फल से ऐसी स्थिति में हूँ और ठीक है। तो भगवान ऐसे चाहते हैं कि मैं दरिद्र होऊंगा, ठीक है, तो यही स्थिति में हम हरे कृष्णा कीर्तन कर सकते हैं। किसी अवस्थे में भी कोई बाधा नहीं है कृष्ण का भजन करने के लिए। कृष्ण का भजन करने के लिए बड़ा पंडित होने का जरूरत नहीं है, बड़ा धनी होने का जरूरत नहीं है, केवल हृदय में वो भाव होना चाहिए कि कृष्णा हमारा प्रभु है और मैं उनका दास है और भगवान कृष्णा इतना दयाल है कि हमको बहुत सरल सुंदर आनंदमय साधना प्रणाली दे है। तो कृष्ण का भजन में क्या करना है, तो हरे कीर्तन करना, कृष्ण का नाम हरे कृष्णा, इसमें कुछ भी कठिनाई नहीं है। कृष्ण का भजन करने में कठोर तपस्या करने का कुछ भी आवश्यकता नहीं है, केवल भगवान कृष्ण का नाम उच्चारण करना है। और वो कृष्ण नाम उच्चारण करने से क्या होता है, चेतो दर्पण मार्जनम, वो चित्त शुद्धि, जिसलिए योग्य अंग कठोर तपस्या करने से प्रयास करते जिससे उनका मन से काम क्रोध लोभ इत्यादि निकाल जाते। भगवान के भक्तों केवल कृष्ण नाम कीर्तन करने से वो एक ही फल मिलते। तो सुदामा वास्तविक महात्मा है और इन्होंने दिखाया तो कैसे हम जो दुरात्मा है हम उनके आश्रय में उनके मार्गदर्शन से हम भी भगवान कृष्ण के प्रिय भक्त हो सकते हैं। सुदामा का क्या योग्यता था, तो धनी नहीं थे, बड़ा पंडित नहीं थे। तो सुदामा की योग्यता यही थी कि सुदामा इनके हृदय में केवल कृष्ण का भजन किया है। तो ऐसे हम कृष्ण का भजन करना चाहिए। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार है कि सुदामा त्यागी नहीं थे, गृहस्थ थे। तो ये कृष्ण भक्ति तो सबके लिए, ऐसा नहीं है कि सन्यासी होना चाहिए। भगवान कृष्ण स्वयं द्वारकाधीश है, इनके 16,108 रानी थी। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण देखा है कि गृहस्थ जीवन तो कोई बाधा नहीं है आध्यात्मिक विकास में। आजकल भारत में ये शब्द बहुत उच्चारित है, विकास विकास, तो हम भी बोलते हैं विकास, सबका विकास होना चाहिए। तो आध्यात्मिक विकास होना चाहिए, आध्यात्मिक विकास हो सकते कृष्ण भजन से। तो ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भवन अमृत संघ जो इस्कॉन का नाम है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, हमारा यही प्रचार है कि आपकी संस्कृति कृष्ण भक्ति प्रचार करना पूरी पृथ्वी में प्रचार हो रहे हैं। हमारे परम आराध्य श्री गुरुदेव श्रील प्रभुपाद तो वास्तविक महात्मा थे, क्योंकि वे पूरा कृष्ण के चरण में आश्रित थे। और इन्होंने अमेरिका जाकर कृष्ण भक्ति प्रचार की। तो भगवद गीता और कृष्ण नाम, भगवद गीता का तत्व ज्ञान का प्रचार करने से और हरि नाम कीर्तन करने से श्रील प्रभुपाद पाश्चात्य देशों में कृष्ण भक्ति प्रचार किया। तो ये आपकी संस्कृति है, वास्तव में ये आत्मा की संस्कृति है, परंतु विशेषकर यही अंचल में सौराष्ट्र में बहुत प्राचीन काल से आप सब स्वाभाविक कृष्ण भक्त है। कि कृष्ण भक्ति आजकल पूरी पृथ्वी में फैले हुए है वो आपका गौरव है, क्योंकि आप सब कृष्ण के लोग हैं। तो यहाँ आके हम केवल यही प्रार्थना करते हैं कि आपकी मूल संस्कृति कृष्ण भक्ति आप पूरी गंभीरत्व ग्रहण कीजिए और इसकन जो पूरी पृथ्वी में कृष्ण भक्ति प्रचार करते हैं। तो आप सबों से हम सहयोगिता करने चाहते हैं, जिससे यहाँ पर सौराष्ट्र में फिर एक आध्यात्मिक क्रांति होगी। इस प्रकार क्रांति से किसी का नुकसान कुछ भी नहीं होते, कुछ भी नाश नहीं होते, हत्या वैसे ऐसा कुछ भी नहीं होते। ये आध्यात्मिक क्रांति में सबका कल्याण होते। यही जीवन में भी यदि हम कृष्ण भक्ति गंभीरत्व से ग्रहण करेंगे तो हम शांति मिलेगी, हम भौतिक दुखों से हम शांति मिलेगी और हम आशय मिलेंगे कि त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुना। यही जीवन में जो कृष्ण भक्ति करते हैं तो भगवान कृष्ण की दया से भगवान का धाम जाते और ये घर संसार में वापस नहीं आते हैं। तो यही हमारा प्रचार है। हम श्रील प्रभुपाद के तरफ से श्रील प्रभुपाद का आदेश के अनुसार यही कृष्ण भक्ति प्रचार करते हैं। और हमारी यही प्रार्थना है कि आप सब जो पुण्यशाली है तो परम पुण्यवान हो जाए कृष्ण भक्ति गंभीरत्व से ग्रहण करने से। गंभीरत्व से अर्थ क्या है? तो आजकल हम पूर्व युगों के लोग जैसे बहुत तपस्या करने के लिए योग्य नहीं है, तो श्रील प्रभुपाद पूर्वाचार्यों की रीति के अनुसार हमको भजन प्रणाली दी कि हमें प्रतिदिन हरे कृष्ण नाम जाप करने चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो नाम जाप करने चाहिए। तो माला में 108 दाना है, तो 16 बार तो माला पूर्ण करने है। तो इस प्रकार देर से 2 घंटा लगते साधना हरि नाम जाप करने है। और इसलिए हमें सुबह सुबह उठना है, जो एक पीढ़ी के पहले सब वैसे किए नहीं, और टीवी का युग के पहले सब लोग तो सूर्योदय के पहले उठते थे, स्नान करते थे, और शीतकाल में भी, और कुछ भजन और पाठ ध्यान जप पूजा ऐसे करते थे। आजकल तो कम लोग करते, परंतु आध्यात्मिक उन्नति के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। तो यही सब है, और चार नियम पालित है, मांस भक्षण नहीं करना, जो सौराष्ट्र में नहीं था, बिल्कुल नहीं था, मांस मत्स्य अंडे तो बिल्कुल नहीं था। आजकल तो कलयुग का प्रभाव से होते हैं। तो जो गंभीरत्व से कृष्ण भक्ति करते हैं तो जरूर वो सब नहीं करते। और अवैध स्त्री पुरुष संग वर्जित है, जो साधारण सभ्यता में वो स्त्री पुरुष विवाहित होने के बाद मैथुन हो सकते, उसके अलावा नहीं। तो वो एक नियम है कृष्ण भक्ति गंभीरत्व से ग्रहण करने के लिए। और सभी प्रकार का नशा, जैसे शराब, तंबाकू, पान, गुटखा, वो सब तो कृष्ण भक्ति में नहीं है, सब वर्जित है। और सभी प्रकार जुआ खेलना इत्यादि वो सब नहीं है। तो शुद्ध कृष्ण भक्ति जीवन में ये सब नियम पालन करना चाहिए, जिससे मन काम क्रोध लोभ इत्यादि से दूषित ना हो, और कृष्ण नाम जप करना है। तो ये हमारा प्रस्ताव है, और हम आप सभी पुण्यात्माओं को निवेदन करते हैं कि आप सब पूरी गंभीरत्व से कृष्ण भक्ति ग्रहण कीजिए। जैसे आजकल अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका सब देश में बहुत से लोग कृष्ण भक्ति ग्रहण करते हैं। ये आपकी संस्कृति है, हमारा निवेदन है कि आप सब पूरी गंभीरत्व से ये कृष्ण भक्ति जीवन ग्रहण कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। धन्यवाद ध्यानपूर्वक श्रवण करने के लिए। अगर किसी का प्रश्न है तो जरा सा अभी पूछिए, और वो दिखाओ माइक है।
हरे कृष्णा, कोई ना कोई प्रश्न हो तो आप तो पूछी सको छो,
और गुजराती में भी पूछ
सको छो,
और हिंदी में उत्तर मिलेंगे।
हिंदी में हम जवाब करते हैं ना, कोई प्रश्न हो पूछ सको छो।
हरे कृष्ण।
श्रीमान वेद ये कहते हैं, जो वेद है चार वेद, ऋग्वेद, सामवेद, वो चार वेद है, इसमें ऐसा कहा जाता है कि ओनली ईश्वर की पूजा कीजिए, कोई देवता की नहीं, कृष्ण शंकर कोई भी देवता है उसकी पूजा मत कीजिए, मात्र ईश्वर ही एक है, तो इसका आपका क्या जवाब है?
चार वेद है, और कि केवल कृष्ण की पूजा करने है, भगवान ईश्वर की पूजा करने है, कोई वचन है क्या? तो वेद शास्त्र में इंद्र की पूजा, वरुण इत्यादि देवताओं की पूजा का वचन है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं वैदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः, सभी वेद शास्त्र में वेद्य, वेद शब्द का अर्थ है विद्या, और वो सभी वेद शास्त्र में वो सब विद्या जो है उसका उद्देश्य क्या है, भगवान कृष्ण कहते हैं मैं हूं, वैदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः। और गीता में भगवान कृष्ण कहते सर्वदा मां परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, और सभी प्रकार के धाम धर्म छोड़ के केवल मुझ में शरण ले लो। देव देवियों की पूजा के बारे में भगवान कृष्ण कहते हैं कि यान्ति देवव्रता देवान पितृन यान्ति पृथ्वीव्रता भूतानि यान्ति भूतेज मध्याजे नौपी यान्ति माम। भगवान कृष्ण कहते कि जो देव देवियों की पूजा करते तो देव लोग जाते, जो पितृयों की पूजा करते तो पितृ लोग जाते, जो भूत प्रेत की पूजा करते वैसे स्थिति मिलते, और जो मेरी पूजा करते मेरे पास आते। इसके बारे में और भगवान कृष्ण कहते कामाय स्थाय स्थाय हृदय ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता, जो देव देवियों की पूजा करते भगवान कृष्ण कहते उनकी बुद्धि कम होते, अंधवत् तु फलंते शंग तद् भावत् अल्पमेधसम, क्योंकि देव देवियों की पूजा करने से लोग भौतिक वरंग मिलते, धन संपत्ति स्वर्ग वास इत्यादि, लेकिन वो सब अस्थाई है, और कृष्ण की पूजा करने से तो शाश्वत कल्याण मिलते। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि लोग की बुद्धि कम है यदि वे देव देवियों की पूजा करते, क्योंकि कृष्ण की पूजा करने से परम कल्याण मिलते। तो इसलिए आचार्यों ये सब वचनों का समाधान किए कि वेद शास्त्र में भिन्न भिन्न देव देवियों की पूजा और पुराण शास्त्र में भिन्न भिन्न देव देवियों की पूजा अनुमोदित होते हैं, परंतु वो सब अलग अलग स्तर के लोग के लिए है। कुछ लोग है जो भौतिक सुख की बड़ी उससे बड़ी आकांक्षा करते हैं, और उनके लिए वो कर्म मार्ग है, कांक्षांत कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रम हि मानुषे लोके सिद्धिः भवति कर्मजा। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि लोग जो भौतिक सुख चाहते हैं तो देव उपासना करते हैं, और तुरंत वो भौतिक सुख मिलते कर्म खंड से, परंतु शास्त्र में वो कर्म खंड है, ज्ञान खंड भी है उपनिषद शास्त्रों में। तो वेद शास्त्र में ऐसा कहना है देव देवियों की पूजा करने से भौतिक वरंग मिलते, परंतु उपनिषद शास्त्र में वो ज्ञान शास्त्र में चेतावनी देते कि जो भी सुख हम मिलेंगे देव देवियों की पूजा से वो अस्थाई है, और ये सब उपनिषदों का सिद्धांत भगवान कृष्ण संक्षेप में कहते हैं गीता में गीतोपनिषद में कि ये संसार क्या है, दुखालयम अशाश्वतम, ये भौतिक जगत दुखमय है और अशाश्वत, कुछ भी यहाँ नहीं स्थिर रहेगा। तो वो सब देव देवियों की पूजा होती है वो भी अच्छी होते है, किस प्रकार के लोग के लिए, जो भौतिक इंद्रिय सुख से आ सकते, लेकिन उस स्तर पर और ऊपर जानना चाहिए, हमको देखना चाहिए कि भौतिक संसार दुखमय है, इसलिए हमें और उच्च आराधना करना चाहिए, उस प्रकार की आराधना जिससे हमारा परम कल्याण होगा। तो इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं माम एकम शरणं व्रज। वैदिक शास्त्र में वो देव देवियों की पूजा होती है, वो अच्छा होते हैं एक प्रकार के लोग के लिए, लेकिन जिनकी उच्च बुद्धि है सावधान परित्यजा माम एकम शरणं व्रज, केवल कृष्ण की आराधना करते हैं।
आर्य समाज है वो ऐसा कहते हैं कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। लेकिन मेरा ये अनुभव है कि जो मूर्ति होती है वो मंदिर में जाने से मन को शांति मिलती है। तो आपका क्या कहना है?
आपका अनुभव है वो कैसे होते हैं? उसका मतलब है कि मूर्तियों से आप आशीर्वाद मिलते हैं ना। तो मूर्ति तो खाली पत्थर नहीं है, यदि मूर्ति तो खाली पत्थर था तो बड़े बड़े आचार्यों क्यों मूर्ति पूजन स्थापन किए? शंकराचार्य, शंकराचार्य क्या मूर्ख व्यक्ति? नहीं, वो जो शंकराचार्य तो बद्रीनाथ में बद्री नारायण की पूजा स्थापन की, और भगवान कृष्ण स्वयं उपस्थित होते मूर्ति के रूप में। हम यहाँ आने के पहले तो हवेली गया था श्रीनाथ जी का दर्शन, तो आप कैसे अनुभव करते श्रीनाथ जी के सामने? वो भक्ति भावना आते हैं ना, ये भगवान की कृपा है, भगवान इनकी कृपा। भगवान सर्वव्यापी है, तो हम कैसे सर्वव्यापी भगवान की पूजा करेंगे? इनकी कृपा से वो छोटा सा आकार में उपस्थित होते हैं जिनसे हम इनकी उपासना कर सकते, वो इनकी कृपा है। हरे कृष्ण,
हरे कृष्ण,
हेलो से हरे कृष्ण बोलना।
हरे कृष्ण, हरे राम, राम राम। जब भी सत्संग चला तो भाई साहब ने जब पूछा कि फिर मंदिर में जाने से क्या मिलता है, देखो मंदिर में जाने से मंदिर में पत्थर की मूर्ति होती है, वो बोल नहीं सकती है, वहां जाने से इंसान को शांति मिलती है, लेकिन सत्संग सुनने से
और सत्संग में साधु जन कहेंगे आप मंदिर जाए।
गंगा भी बोल रही थी कि मैं भी सत्संग से जुड़ी हूँ, ये पूरे सबको ताड़ती है गंगा। जो गंगा में इतनी गंदी भी होती है तो भी आदमी जाता है, बोलता है वो घर में से ढूंढेगा
वो क्या, वो नरोत्तम दास क्या कहते, गरंगा परशो हेले पश्चाते भवन पवन दर्शन पवित्र करो ए तो मार्गुन। हमारा एक बंगाली गौरिया आचार्य ऐसे, गंगारा परशो हेले पश्चाते भवन, तो गंगा का स्पर्श करने से मतलब बार बार गंगा स्नान करने से हम पवित्र हो जाते, पूरा पवित्र हो जाते, और पूरा पवित्र होते वैष्णव का दर्शन से। तो आप जो बोलते वो सही है, तो फिर भी हम मंदिर जाना बंद नहीं करेंगे,
जाना चाहिए, लेकिन वहां मंदिर में जाने से 15 मिनट आधा घंटा शांति, लेकिन सत्संग में आने से आपको ताकत मिलती है। बोलते घड़ी आधी घड़ी सत्संग से जुड़े के रहेंगे ना, लाइफ में कभी दुखी नहीं। कृष्ण भगवान का एक अच्छा पॉइंट है,
थैंक यू, हरे कृष्ण।
कृष्ण भगवान कहीं है, कहीं नारद आता है महल पूरा मोल में ढूंढता है कृष्ण किधर है, कृष्ण किधर है, कृष्ण अपन उसके रूम में जो उसमें महल है वही भक्ति कर रहे हैं। तो नारद बोलते हैं यार कृष्ण पूरा देश आपको पूछता है तो आप किसकी भक्ति कर रहे हैं, तो कृष्ण उसको ये भक्ति में जरूर के बोलते हैं, जो मेरे प्रेमी है जो दुखी है मैं उनकी भक्ति कर रहा हूँ जो वो सुखी है।
वो क्या है भगवान में मद भक्ता पूज्या भ्यादिका। कृष्ण भगवान कहते हैं कि मेरी उपासना करने से मेरे भक्तों की उपासना करना श्रेष्ठ। हरे कृष्ण। और किसी का सवाल है, प्रश्न?
हरे कृष्ण।
वो उत्तर है, प्रश्न क्या है? हरे कृष्ण सभी प्रश्न का उत्तर है।
लेकिन मेरा कहना ये है कि अगर जन्म हुआ है कोई भी आदमी
का, अगर जन्म जन्म तो होते हैं,
योनि द्वार से आया हुआ कोई कभी भी ईश्वर हो नहीं सकता, भगवान नहीं हो सकता। आपका क्या राय, जो योनि द्वार से आया हुआ कोई भी जन्म लिया है वो भगवान हो सकता
नहीं? He said that those who born from
योनि, he is
not God. Krishna
also like that. हाँ, वो भगवान कृष्ण क्या कहते हैं भगवद गीता में? अजोपि सन्व्ययात्मा भूतानम ईश्वरोपि। हम शास्त्र से समझना चाहिए, शास्त्र से हम भगवान के बारे में ज्ञान मिलते। किसी भौतिक व्यक्ति की बुद्धि से वो अनुमान जो है वो विचार वो तो नहीं चलेगा, शास्त्र से हमें समझना चाहिए। बहुत सारे लोग उनकी तुच्छ बुद्धि लगा के भगवान के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन शास्त्र से हमें समझना चाहिए। इसलिए सब बड़े बड़े आचार्य जो शास्त्र के अनुसार शिक्षा देते, तो गीता में भगवान कृष्ण कहते अजोपि सन अव्यय आत्मा भूतानम ईश्वरोपि सन प्रकृति श्रामधिष्ठाया संभवामि आत्मा मायाया। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं अजा हूँ। अजग मतलब अजन्म, कृष्ण का जन्म नहीं है, अर्थात भगवान कृष्ण का जन्म कोई साधारण व्यक्ति का जन्म जैसे नहीं है। हम भौतिक संसार में यहाँ आते हैं कैसे? कर्म फल के अनुसार। हम कर्म भौतिक प्रकृति से हम भौतिक संसार में आते, लेकिन भगवान कृष्ण मायाधीश है, हम मायाधीन है और भगवान कृष्ण मायाधीश है। जो भी सन और भगवान कृष्ण अव्यय आत्मा, भगवान कृष्ण का रूप और भगवान कृष्ण जो व्यक्ति है उनका आत्मा अभिन्न है। हम एक आत्मा है एक भौतिक शरीर के अंदर में है, परंतु कृष्ण का शरीर सच्चिद आनंदमय पूरा आध्यात्मिक है। तो कृष्ण का जन्म तो कोई साधारण व्यक्ति का जन्म जैसे नहीं। अजो भी सन अव्यय आत्मा, मैं ईश्वर हूँ फिर भी मैं साधारण व्यक्तियों के बीच में आता हूँ। कैसे? इनकी अपनी इच्छा से और अपनी शक्ति में से। तो भगवान का कृष्ण का जन्म कोई साधारण व्यक्ति का जन्म जैसे नहीं है, ऐसे ही समझना बहुत बड़ी गलती है। शास्त्र से हमें समझना चाहिए सब कुछ, और इसलिए हम हमारा प्रचार सब कुछ जो हम करते हैं हम भगवद गीता यथारूप तैनमूल रूप है उसके द्वारा हम प्रचार करते, कुछ काल्पनिक हम नहीं बोलते। हमारी बुद्धि बहुत तुच्छ है, नहीं हम तुच्छ जीव, हम नहीं मालूम है हम कहाँ से आया है, कहाँ हम जा रहे हैं और किस लिए हम भौतिक संसार में है। हम पूरा नियंत्रित होते हैं, तो भगवान के बारे में हम कैसे समझ सकते? तुझ बुद्धि लगाने से संभव नहीं होगा, भगवान की कृपा से हम समझ सकते। भगवान की कृपा हम मिलते हैं भगवद गीता के द्वारा, साधु जन और भगवद गीता का ज्ञान के द्वारा वो सब मिलते। कल्पना से सब कुछ कुछ भी कल्पना से कुछ भी हम समझ नहीं करेंगे. और सो हरे कृष्ण.